नमस्कार भारत, 30 जुलाई दिन मंगलवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। ब्राजील की एक जेल में गैंगवार, कम से कम 52 की मौत। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की एक कोर्ट ने 5 साल की बच्ची के रेप और हत्या मामले में 9 महीने में सुनाया फैसला।
तो माननीय न्यायालय द्वारा अलग अलग धाराओं में जो है अलग अलग अपराध में जो है उसको दंडित किया गया, जिसमें फांसी की सजा और 376 एवी में जो है जीवन काल तक के लिए, साथ ही उसमें मृत्यु दंडित किया गया है।
और भारत प्रशासित कश्मीर में कितनी प्रासंगिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, खास बातचीत में सुनाएंगे मीर वाइज उमर फारूक का जवाब।
हुर्रियत एक पॉलिटिकल फोर्स है, मान लीजिए ये हुर्रियत को भी साइडलाइन करते हैं, कल को इनको सड़क के साथ बात करनी पड़ेगी, कोई उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होगा।
खास रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ में क्यों घटे बाघ, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। ब्राजील के पारा राज्य की एक जेल में दो गुटों के बीच हुए संघर्ष में कम 52 कैदियों की मौत हो गई है। ये गैंगवार लगभग 5 घंटे तक जारी रही। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए लोगों में से 16 के सिर कलम कर दिए गए। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमरीका अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अफगानिस्तान से अपने सैनिक हटाने की योजना पर काम कर रहा है। पोम्पियो ने कहा कि उन्हें ये निर्देश राष्ट्रपति ट्रंप से मिला है, जो अस्पष्ट और कभी न खत्म होने वाले इस युद्ध को विराम देना चाहते हैं।
We want them to take their country back and we want to reduce what is for us tens of billions of dollars.
हम अपने सैनिकों को अपने देश वापस बुलाना चाहते हैं। हम अपने देश के हर साल खर्च होने वाले अरबों डॉलर बचाना चाहते हैं। हम उन सैनिकों के बच्चों का खतरा और डर कम करना चाहते हैं जिनके पिता अमेरिका के लिए लड़ रहे हैं। हमें यकीन है कि हमारे पास हिंसा कम करने और युद्ध विराम का रास्ता है, लेकिन इन सब का ये मतलब नहीं कि अफगानिस्तान में आतंकवाद पर रोक लगाने की अमरीकी कोशिशों का असर भी खत्म हो जाएगा। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। इस बीच अमरीका की ओर से नियुक्त किए गए मध्यस्थ जालमाए खलीलजाद ने भी तालिबानी चरमपंथियों से द्विपक्षीय वार्ताएं तेज कर दी है। हालांकि दूसरी तरफ तालिबान की जिद की वजह से अफगान सरकार को अब तक इस बातचीत से दूर रखा गया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित गिलरॉय शहर में एक फूड फेस्टिवल में रविवार देर शाम हुई गोलीबारी में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 15 लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मारे गए हमलावर की पहचान 19 वर्षीय सेंटिनो विलियम के तौर पर की है। गिलरॉय शहर के पुलिस प्रमुख स्कॉट स्मिथी ने एक प्रेस वार्ता में घटना के बारे में जानकारी दी।
We do have 3 people deceased, confirmed deceased. We have one who is a 6-year-old male.
गोलीबारी में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मारे जाने वालों में 6 साल का एक बच्चा, 13 साल की एक लड़की और तकरीबन 20 साल का एक युवक था। ये थे गिलरॉय शहर के पुलिस प्रमुख स्कॉट स्मिथी के शब्द। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में हमलावर की भी मौत हो गई है। वहीं पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इस गोलीबारी में कोई दूसरा संदिग्ध भी तो शामिल नहीं था जो अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हो। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा है कि हंगरी के कड़े शरणार्थी कानून यूरोपीय संघ के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। अदालत के इस फैसले के बाद हंगरी सरकार को सभी शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा देना अनिवार्य हो जाएगा। 4 साल पहले हंगरी की सरकार ने एक नया कानून बनाकर शरणार्थियों को वापस भेजने का रास्ता अख्तियार किया था, लेकिन अब अदालत ने इस कानून को अवैध करार दिया है। यमन के उत्तरी प्रांत सादा के एक बाजार में हुए हमले में 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत की खबर है। हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सऊदी समर्थित सैन्य बलों का दावा है कि ये हमला हूती विद्रोहियों ने किया है। सैन्य बलों का कहना है कि ये हूती विद्रोहियों द्वारा किया गया एक आतंकी हमला है और विद्रोहियों ने उन आदिवासियों को निशाना बनाया है जो उनका विरोध करते हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार, भारत की शुरुआत आज करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। ब्राजील के उत्तरी राज्य पारा की एक जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। जेल में करीब 5 घंटे तक हिंसा हुई और इसकी वजह से कम 52 कैदियों की मौत हो गई। संघर्ष के दौरान कुछ लोगों ने जेल के एक हिस्से में आग भी लगा दी, जिससे कई कैदियों का दम घुट गया। इस बीच कैदियों ने दो अधिकारियों को भी बंधक बना लिया था। पूरी रिपोर्ट सिंधु वासनी से।
ये ब्राजील के एक संवाददाता हैं जो फिलहाल वहां की सबसे बड़ी खबर रिपोर्ट कर रहे हैं। खबर है ब्राजील के एक जेल में हुई भयानक गैंग वॉर की। ब्राजील के पारा राज्य की एक जेल में कैदियों के दो गुटों में हिंसक संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में कम से कम 52 कैदियों की मौत की खबर है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अल्टामेरा जेल में करीब 5 घंटे तक ये गैंग वॉर जारी रहा। स्थानीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक जेल के एक हिस्से में कैद गैंग के लोग जेल के दूसरे हिस्से में पहुंच गए और इसके बाद संघर्ष शुरू हो गया। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए लोगों में से 16 के सिर कलम कर दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि जेल के एक हिस्से में आग लगा दी गई और धुएं की वजह से कई लोगों का दम घुट गया। इतना ही नहीं, कैदियों ने जेल के दो अधिकारियों को भी बंधक बना लिया था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उन्हें अब छुड़ा लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि हिंसा की शुरुआत स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे के करीब हुई और संघर्ष पर काबू पाने में दोपहर तक का समय लग गया। ब्राजील की मीडिया में जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं उनमें से एक में जेल की एक इमारत से धुआं निकलता दिख रहा है। एक अन्य वीडियो क्लिप में कैदी जेल की छत पर घूमते दिख रहे हैं। जेल में जिन दो गैंग के बीच लड़ाई हुई है, अधिकारियों ने उनके नाम की अब तक जानकारी नहीं दी है। ब्राजील की G1 समाचार संस्था के मुताबिक अल्टामीरा की जिस जेल में हिंसा हुई है वहां 200 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन वहां 311 कैदियों को रखा जा रहा था। ब्राजील की जेलों में हिंसा की घटनाएं आम है। यहाँ की जेलों में करीब 7 लाख लोग बंद हैं और ज्यादातर जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं। विरोधी गुटों के बीच जेल में संघर्ष की खबरें ब्राजील से लगातार आती रहती हैं। मई महीने में एक ही दिन देश की 4 अलग-अलग जेलों में हुए संघर्षों में 40 लोगों की मौत हो गई थी।
इस बीच अधिकारियों ने जानकारी दी है कि हिंसा के लिए जिन 10 कैदियों को जिम्मेदार माना गया है उन्हें ज्यादा सुरक्षा वाली दूसरी जेल में भेजा जा रहा है। रिपोर्ट सुना रही थी सिंधु वासनी। रुख भारत का और खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले की एक कोर्ट ने 5 साल की एक बच्ची से रेप और उसकी हत्या के मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा दी है। इस मामले का फैसला 9 महीने में ही आ गया है। सुनिए शुरय नियाजी की रिपोर्ट।
यह मामला पिछले साल 31 अक्टूबर का है, जब पिपरिया में दोपहर में अपने घर के बाहर खेल रही 5 साल की मासूम को अगवा कर बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना को अंजाम दीपक किरार नाम के शख्स ने दिया था। दीपक किरार ने बच्ची को चॉकलेट की लालच देकर अपहरण किया था। उसके बाद सुनसान इलाके में ले जाकर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर लाश वहीं जमीन में दफन कर दी थी। मासूम की तलाश कर रही पुलिस ने आरोपी को बुरहानपुर से पकड़ा था और उसके बाद उसकी निशानदेही पर शव को बरामद किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने सोमवार को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने नाबालिग बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के दोषी दीपक किरार को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास भी दिया। यह मामला पिपरिया में बहुत चर्चा में रहा था और इसके खिलाफ लोग सड़कों पर भी आ गए थे। जिला अभियोजन अधिकारी KP अहिरवार ने बताया,
मामला चूंकि बहुत गंभीर किस्म का अपराध था, जो कि 5 साल की बच्ची के साथ जो है उसके साथ रेप करना और उसकी हत्या करना और उसको छुपा देना गंभीर किस्म का अपराध था, जिसमें जो पिपरिया में जो है 2018 में ये घटना हुई थी, बहुत असंतोष हो गया था और लोगों में बहुत आक्रोश था इस बात को लेकर। तो माननीय न्यायालय द्वारा जब उसमें फैसला आज दिनांक को दिया गया है, जिसमें उसको जो है मृत्युदंड अलग अलग सेक्शन में अलग अलग धाराओं में जो है अलग अलग अपराध में जो है उसको दंडित किया गया, जिसमें फांसी की सजा धारा 363 में जो 7-3 वर्ष का कारावास और 366 5 वर्ष का, 201 में 7 वर्ष और 376 एवी में जो है मतलब जीवन काल तक के लिए, साथ ही उसमें मृत्युदंड के दंड से भी दंडित किया गया है।
इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चालान घटना के 2 हफ्ते बाद ही पेश कर दिया था। वहीं स्थानीय वकीलों ने आरोपी की पैरवी करने से भी इनकार कर दिया था। इस मामले में जज ने 98 पेज का फैसला 10 मिनट में सुनाया। अदालत ने 25 जुलाई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट के सामने 32 गवाह पेश किए। मध्य प्रदेश में कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले में फांसी की सजा सुनाए जाने का यह 28वां मामला है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने दिसंबर 2017 को 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा देने के विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया था। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में विधायक कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली लड़की जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। पीड़ित लड़की रविवार को एक सड़क हादसे में घायल हो गई थी और लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती हैं। इस हादसे में उनकी 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई और वकील बुरी तरह घायल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। इस खबर पर हमारे साथ ही दिलनवाज पाशा ने नजर बनाई हुई है और अभी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी दिलनवाज, क्या अपडेट है आपके पास? क्या अस्पताल से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है ताजा?
जी, कल देर शाम मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था। उसके मुताबिक पीड़िता और उनके वकील दोनों की हालत स्थिर है और वो अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। इसके अलावा रविवार को रायबरेली के गुरुबख्शगंज में जो हुआ वो हादसा है या साजिश, इसकी पड़ताल अब सीबीआई करेगी। कल देर शाम उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी कहा था कि अगर परिवार चाहेगा तो इसकी सीबीआई जांच से हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं इससे पहले कल लखनऊ सीएफएसएल की टीम ने घटना स्थल का दौरा किया और उसके प्रत्येक पहलू पर जांच की। ये जो पूरे देश भर में सवाल पूछा जा रहा है कि जो हुआ है वो हादसा है या साजिश, उसका जवाब तलाशने की कोशिशें अब होने लगी हैं।
सरकार और पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन पीड़ित की मां से कल हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र की जो बातचीत हुई थी, जो हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पर भी है, क्या लगता है उनकी बहुत सी शिकायतें हैं, इन सब कार्रवाई के बाद क्या उनका रुख कुछ बदला है?
देखिए, एक बड़ा सवाल जो पैदा हुआ है वो इस जानकारी के सामने से आने से हुआ है कि पीड़ित परिवार ने 2 सप्ताह पहले ही स्थानीय पुलिस को आवेदन देकर अपनी सुरक्षा की मांग की थी और कहा था कि उन्हें विधायक जो कुलदीप सिंह सेंगर हैं उनके परिवार की ओर से धमकियां मिल रही हैं, जो बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें समझौता करने के दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके उनकी सुरक्षा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, तो एक गंभीर सवाल ये जानकारी सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर भी खड़ा हुआ है। और जहां तक पीड़ित परिवार की बात है, वो कल से ही जब से ये परसों जब से ये हादसा हुआ है तब से लगातार पीड़ित परिवार ये सवाल उठा रहा है कि ये एक साजिश है, हत्या है। लेकिन वहीं पुलिस कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी ये संकेत देते हुए दिखे कि ये शायद हादसा है।
जी, बहुत शुक्रिया दिलनवाज। सच क्या है वो जांच के बाद सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत प्रशासित कश्मीर की बात करते हैं। अब कश्मीर में राजनीतिक तौर पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अलग थलग सा है, बातचीत की कोई पहल होती नहीं दिख रही है। हमारे साथी शकील अख्तर ने हुर्रियत के नेता मीरवाइज उमर फारूक से श्रीनगर में मुलाकात की और उनसे सबसे पहले पूछा कि क्या वो सरकार से बातचीत के पक्ष में है।
देखिए, बुनियादी लिहाज से हम ये महसूस करते हैं कि बातचीत के लिए भी एक माहौल की ज़रूरत है। अगर हम 2016 की बात करें जब पार्लियामेंट डेलीगेशन आए और उस वक्त बातचीत करना उन्हें चाहिए, जाहिर सी बात है कश्मीर की सड़कों पे आग लगी हुई थी, लोग मारे जा रहे थे, पैलेट गन का इस्तेमाल था, हर दिन 5-5, 6-6 कैजुअल्टीज़ हो रही थी, तो उन हालात में बातचीत का माहौल बनाना और बातचीत के लिए जाना बड़ा मुश्किल मामला होता है। इसीलिए हम हुकूमत से बार बार ये कहते रहे कि एक ऐसे मरहले पे बातचीत का प्रोसेस आगे चल सकता है जब थोड़ा बहुत एक रिलेटिव काम हो सिचुएशन में। कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आज हमारे पढ़े लिखे लड़के, छोटे छोटे जवान अपना घर छोड़ रहे हैं, एकेडमिक्स छोड़ रहे हैं, पढ़ाइयाँ छोड़ रहे हैं, और हालात ये है कि हमारी तो दूर की बात है, वो घर वालों की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहूँगा कि एक जनरेशन को पुष्प दीवार किया जा रहा है मिलिटेंसी की तरफ और वायलेंस की तरफ।
बातचीत क्या करना चाहेंगे, हुकूमत की पोजीशन तो आपको पता है।
जो खाका वाजपेयी साहब के टाइम में हमने मुरतब किया था, जिसमें कि जब ये बात चली थी कि भाई आईन के दायरे में बात होगी नहीं होगी, तो उन्होंने कहा था कि भाई इंसानियत जो है आईन से बढ़कर है और इंसानियत के दायरे में हम बात करेंगे। तो हमने भी आमादगी का इजहार किया, हमने बातचीत शुरू की। हम ये महसूस करते थे कि शायद मोदी जी की जो सरकार है वो उसी पैराए में बातचीत के अमल को आगे बढ़ाएगी, लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि उनका रवैया बड़ा सख्तगीर हो गया है और एक मिलिट्री अप्रोच, ऑपरेशन ऑल आउट, मारधाड़, कश्मीर में जो गम गुस्सा है और ख़ासकर हुकूमत हिंद के हवाले से, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। जवानों में ज़्यादा इज़्तिराब बढ़ रहा है। एक मैं कहूँगा कि अब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि गम गुस्सा तो दूर की बात है, मैं कहूँगा कि नफ़रत तक एक सिचुएशन पैदा हो गई है।
हुर्रियत अगर आप यहाँ देखें तो जो कश्मीर की तहरीक रही है उसका महवर रही है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसका जो रवैया और जो मौक़िफ़ रहा है उसमें हुर्रियत का कोई रोल नज़र नहीं आता।
समझने की बात है कि हुर्रियत आवाम के जज्बात और एहसासात को रिप्रेजेंट करती है। मैं ये कहूँगा कि हुर्रियत एक पॉलिटिकल फोर्स है, एक पुरामुन फोर्स है। हुकूमत को ये देखना है कि अगर आज नहीं तो कल, अगर वो ये समझती है कि शायद ताकत के बल पे, तशद्दुद के बल पे वो आवाम की आवाज़ को दबा देंगे, मसला ख़त्म होगा, ये मसला ख़त्म नहीं होगा शकील साहब। ये चौथी जनरेशन है आज कश्मीरियों की जो सड़कों पर निकल रही है 47 के बाद से, और आज हालात इतने ख़राब हैं कि अगर मान लीजिए ये हुर्रियत को भी साइडलाइन करते हैं, कल को इनको सड़क के साथ बात करनी पड़ेगी, कोई उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होगा।
यहाँ पे मिलिटेंसी बज़ाहिर कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, अब वो सूरत हाल नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। जो अलहदगी पसंद क़यादत, सियासी क़यादत थी, वो जेलों में है या फिर वो कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। इस सूरत में पाकिस्तान भी जो है वो उसके ऊपर इक्तसादी दबाव है, बैनुल अक़वामी दबाव है, उसका भी रवैया बदला हुआ नज़र आ रहा है। तो आप ये बताएं कि सूरत में ये तहरीक किस समत जा रही है?
ये एक अवामी तहरीक है, पाकिस्तान की स्पॉन्सर तहरीक नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की जो भी मजबूरियां हैं, जो भी रही होंगी, उन्होंने हाथ खींच लिया, अस्करियत वगैरह बाकी चीज़, मगर हकीकत तो ये है कि आज भी कश्मीर में तहरीक आज़ादी चल रही है, लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। आज भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो कोई प्रोग्राम देती है लोग अमल करते हैं।
दिल्ली में ये तासर है जो हुकूमती हल्के हैं कि जो उनकी सख्त पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से वो कामयाब हो रही है और वो पूरी तरह से काबू पाने में कामयाब रहे हैं। तो इस सूरत में आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में कोई बातचीत के हालात आपको लग रहे हैं?
मुझे लगता है कि अगले 2-4 महीने तक एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी। हकीकत ये है कि शकील साहब कि इनके जो अपने भी लोग हैं, चाहे आप आर्मी के जनरल्स को ले लें, आप रिटायर्ड इनके फौजी ले लें, आप इनके एनालिस्ट ले लें, हर कोई ये कह रहा है कि भाई आखिरकार इस मसले का सियासी हल ही तलाश करना है, क्योंकि अगर उन्होंने यही पॉलिसी चलाई कि भाई आप पुष्प दीवार करने का सिलसिला जारी है, तो हमें ये बहुत बड़ा खदशा है यहाँ पे कि फिर से मिलिटेंसी के एक बहुत ही मैं कहूँगा कि खुरेज दौर का आगाज हो सकता है और उसको फिर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता सारे मामले में।
ये थे हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक। और अब आज के अखबारों की बात सिंधु वासनी के साथ। जी सिंधु
वात्सल्य, आज के अखबारों के पहले पन्ने पर जो खबरें हैं वो है कर्नाटक में येदियुरप्पा का विश्वास मत जीतना, उन्नाव मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर FIR और अपनी विवादित टिप्पणी पर आजम खान की माफ़ी। इसके अलावा साल 2006 के बाद से बाघों की संख्या दोगुनी होने की खबर और मैन वर्सेस वाइल्ड में PM मोदी के आने की खबर भी अखबारों के पहले पन्ने पर है। और आज राज्यसभा में 3 तलाक बिल पेश किया जाएगा, लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है, ये खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर दिख रही है
जी।
अब अगर बात इंडियन एक्सप्रेस की करें तो इसके फ्रंट पेज पर एक खबर है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुलिस से घाटी की सारी मस्जिदों की डिटेल्स मांगी हैं। ये आदेश 28 जुलाई का है और कहा गया है कि वो बंद लिफाफे में सारी मस्जिदों और उनके मैनेजमेंट की डिटेल प्रशासन को मुहैया कराएं। अखबार लिखता है कि श्रीनगर के 5 SP से ये कहा गया है और श्रीनगर के SSP हसीब मुगल ने इस आदेश की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस चिट्ठी की टाइमिंग सही नहीं है क्योंकि घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश से पहले ही वहां के लोग सशंकित हैं और इस चिट्ठी से उनकी चिंताएं बढ़ सकती हैं।
इसे लेकर खबरों में ये भी बताया जा रहा है तमाम तरह की अटकलें और अफवाहें भी वहाँ चल रही हैं
जी। और अगर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर ही देखें तो एक बड़ी सी तस्वीर छपी है जो उन्नाव रेप पीड़िता के गाँव की है। गाँव में पुलिस बलों की तैनाती की गई है और तस्वीर में कई पुलिसकर्मी बाहर कुर्सियों पर बैठे हुए दिख रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स देखें तो इसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में 10 दिन के एक नवजात बच्चे की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में जन्मा ये बच्चा गोलियों से बुरी तरह घायल हो गया था और बाद में इसकी मौत हो गई। इसके माता पिता भी गोलीबारी में गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान संभालनी चाहिए।
नए अध्यक्ष की तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया सिंधु वासनी। और अब एक खास रिपोर्ट। देश में बाघों की गणना की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में बाघों की संख्या बढ़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां बाघों की संख्या कम हुई है। क्या है इसकी वजह? सरकार और विपक्ष के नेता इसे लेकर क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं आलोक पुतुल।
साल 2014 में बाघों की जब गणना हुई थी तब देश भर में 2226 बाघ पाए गए थे, लेकिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की गणना के जो नए आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार देश भर में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। इन आंकड़ों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 19 साल पहले जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तो मध्य प्रदेश के एक तिहाई बाघ छत्तीसगढ़ के जंगलों में रह गए थे, लेकिन इन 19 सालों में बाघों के मामले में दोनों राज्यों की स्थिति एक दूसरे के बिल्कुल उलट हो गई है। 2014 में हुए बाघों की गणना में मध्य प्रदेश में 308 बाघ पाए गए थे, जबकि सोमवार को जारी आंकड़ों में बाघों की यह संख्या 526 पहुंच चुकी है, जो देश में सबसे अधिक है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में 2014 में 46 बाघ पाए जाने का दावा किया गया था, अब बाघों की यह संख्या घटकर केवल 19 रह गई है। हालांकि बाघों के जो आंकड़े आए हैं वह भाजपा सरकार में रमन सिंह के कार्यकाल के ही हैं, लेकिन नए आंकड़े आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पार्टी की नई सरकार को कई सुझाव दिए।
उनके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ड्राइवर के लिए जो बेहतर अधिकारियों की नियुक्त करें और जिस प्रकार जहर दे के मारा जाता है, जिस प्रकार शिकारी उसको शिकार करते हैं, इस पर यदि विभाग कठोरता से कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से इसकी संख्या बढ़ सकती है।
हालांकि वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि बाघों की संख्या को लेकर पुराने आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते थे, इसलिए बाघों की अधिक संख्या कागजों में दिखाई देती थी। वन्यजीव विशेषज्ञ मीतू गुप्ता कहती हैं,
पिछली गणना की तुलना में छत्तीसगढ़ में आधी से भी कम हो गई बाघों की संख्या हैरान करने वाली बिल्कुल नहीं है। बाघों के पुराने आंकड़ों पर मेरे जैसे कई लोगों को भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। बाघों की गणना की लगातार बेहतर होती तकनीक की वजह से पहली बार छत्तीसगढ़ में बाघों की मौजूदगी की असली तस्वीर सामने आई है।
मीतू गुप्ता का कहना है कि जब मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना तब एक तिहाई बाघ छत्तीसगढ़ में बचे रह गए थे, लेकिन इनका लगातार शिकार होता गया और बाघों की संख्या घटती चली गई।
छत्तीसगढ़ के जंगलों में बाघों का जमकर अवैध शिकार भी हुआ। साल 2011 से 2017 के बीच छत्तीसगढ़ में बाघ की 11 खालें जब्त की गई हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम के मान्य सिद्धांत की तरफ जाएंगे तो बाघों की असल किलिंग इससे कई गुना ज्यादा हुई होगी।
लेकिन बाघों की घटी हुई संख्या और इनके आधे से भी कम हो जाने के आंकड़ों पर राज्य सरकार के नेता और अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालत यह है कि राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बाघों की गणना को लेकर किसी जानकारी से ही इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बाघों की गणना जब की जाएगी तब सही आंकड़े आएंगे।
देखिए, संख्या का वो आंकड़ा तो मैं अभी देख नहीं पाया और इस प्रकार की ऐसी कोई बात है नहीं। एग्जैक्ट गणना जो है जब तक नहीं हो पाएगा बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन संरक्षण के लिए जिस प्रकार से अभी सरकार कार्रवाई कर रही है।
वन्यजीव संस्थान देहरादून के 28 अलग अलग पैमानों पर बाघों की देश भर में हुई गणना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भले अनभिज्ञता दिखा रही हो, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के पास जो आंकड़े हैं वह तो यही बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में बाघ और बाघ की दहाड़ कमजोर होती जा रही है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब बात एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए कुश्ती का स्वर्ण जीतने वाली विनेश फोगाट की। विनेश सितंबर में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की टीम का हिस्सा होंगी, लेकिन अब वो 50 किलोग्राम वर्ग की जगह 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेलेंगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप की टीम में चुने जाने के बाद विनेश से बात की हमारे साथी अमनप्रीत ने।
कोई भी चेंज करने में टाइम तो लगता है डेफिनेटली, और फिजिकली नहीं इतना जितना मेंटली हमें प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि मैं वो देख रही हूँ कि 53 में तो सभी के साथ अभी मुझे हर 6 मिनट, मुझे ये पता है कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं है कि जी मैच जाएगा 6 मिनट जाएगा, 50 में ऐसा था कि 4-5 को छोड़ के मैं किसी को 6 मिनट दूंगी नहीं, तो वो उस चीज को चेंज करना, अपने आप को 6 मिनट मैच पे करना, फिर 5 या 4 मैच लड़ना 6 मिनट तक कंटिन्यूसली, तो वो ट्रेनिंग में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हर टाइम वो 5 मैच ही हम दिमाग में लेके चले कि स्ट्रॉन्ग मैच है, और उतना ही हम कोशिश करें।
दो चीजें आपसे बात करना चाहूंगा, एक आपकी ट्रेनिंग और एक जो टेक्निकल पॉइंट है, और तीसरा स्ट्रेंथ 50 से 53 में जो आपने स्विच किया, इन तीनों में क्या क्या चेंजेस आपने किए हैं 50 से 53 में स्विच
किया? वाइज हमने बहुत चेंज किया है, अपर बॉडी पे हमने बहुत ज्यादा वर्क किया है अभी, और अपोनेंट के ऊपर भी डेफिनेटली कर रहे हैं कि कौन सा अपोनेंट कभी आ रहा है, किस किस के साथ अभी मैच होना बाकी है, तो जिसके साथ नहीं हुआ उनका मैच देखूंगी वो एक्चुअल में करते क्या है।
और अपर बॉडी को और स्ट्रांग बनाने का मतलब जिम में ज्यादा मेहनत हो रही है?
जिम में भी हो रही है, मैट पे भी हम ट्रेनिंग के बाद जो है उस पर काम कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम अपर बॉडी पे ज्यादा लोड दें, क्योंकि लेग्स का तो डेफिनेटली वर्क मैट बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम रेसलिंग कर रहे हैं।
50 और 53 में जो फर्क है, टेक्निक आपकी वही है या थोड़ा सा बदलाव लाए हो खेलने का तरीका जो है?
वो भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे 53 में, तो मैं वही ट्राई करूंगी, मैं अपना टेक्निक का थोड़ा सा वेरिएशन और बढ़ाऊं, क्योंकि रेसलिंग ऐसा नहीं है कि मैं एक ट्राई कर लिया और मैं 10 दिन में पकड़ जाऊंगा कुछ भी, एक एक साल लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि टोक्यो तक डेफिनेटली।
आप कह रहे हो कि मेंटली भी वर्क करना पड़ रहा है, वो कैसे आप कवर कर रहे हो?
मैं पहले 50 वाले दिनों को याद करूंगी, 50 में जब मैं करती थी तो सभी के, क्योंकि नए सभी अपोनेंट नए थे, उनके साथ कैसा सोचती थी कैसा करती थी, वही अभी 53 में की एक चैलेंज है मेरे लिए, काफी डिफिकल्ट है ये, और लेकिन मैं वो अच्छे से कर रही हूँ और कोच भी देख रहे हैं मेरे में इम्प्रूवमेंट है।
विनेश, मेंस रेसलिंग में बजरंग और वुमेन में विनेश, ये दो ही नाम हर एक बंदा कहता है कि नहीं ये हमारे मेडल कंटेंडर्स है, विनेश अपने आप को और इंडियन टीम को कहाँ देखती है ओलंपिक्स की तैयारी में?
काफी हम बहुत सालों से सीनियर में है, हमारे पास काफी एक्सपीरियंस है, हम काफी कंपटीशन खेल चुके हैं, यू कंटिन्यूसली हम 6-7 साल से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए लोग उम्मीद ज्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज आप जूनियर में देख लीजिए वो अंशु लड़की है, कितना जबरदस्त लड़ी है वो लड़की, पूजा है वो बहुत तगड़ी लड़ी, हार गई वो लेकिन वो तगड़ी है। लड़कों में आप रवि को देख लीजिए, टोक्यो तक आई थिंक काफी स्ट्रांग हमारी टीम जाएगी, और उसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते सिर्फ यही मेडल देगा।
ये थी विनेश फोगाट, और अब खेल की दूसरी खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको क्रिकेट के मैदान पर लेकर चलते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की घोषणा की है। इस चैंपियनशिप में टॉप 9 टेस्ट टीम्स हिस्सा लेंगी, और आने वाले 2 सालों में 27 सीरीज में 71 मुकाबले खेले जाएंगे। ये 9 टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज। इन 2 सालों में मुकाबले होने के बाद आखिरी मुकाबला यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का मुकाबला 2021 में जून के महीने में UK में खेला जाएगा, और जो विजेता होगा वो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन कहलाएगा। ये चैंपियनशिप 1 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शुरू होने वाले एशेज सीरीज से शुरू होगी। तो वहीं भारत के खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार के लिए दुती चंद और खेल रत्न अवार्ड के लिए हरभजन सिंह का नाम खारिज कर दिया है। दोनों खिलाड़ियों का नाम राज्य सरकारों ने प्रस्तावित किया था। निर्धारित तारीख तक दुती के पदक रैंकिंग के अनुसार क्रम में नहीं थे। मंत्रालय ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से पदकों के रैंकिंग के अनुसार चयन करने को कहा था। दुती इसमें 5वें स्थान पर थी, इसलिए नामांकन खारिज कर दिया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों के नाम को भेजने में राज्य सरकारों ने देरी भी की थी। नामांकन खारिज होने के बाद दुती चंद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिली। उन्होंने पटनायक को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जीते गए स्वर्ण पदक को दिखाया और अर्जुन अवार्ड के लिए दोबारा से फाइनल भेजने का आग्रह किया।
और चलते चलते मुख्य समाचार सिंधु वासनी से।
BBC समाचार। ब्राजील के पारा राज्य की एक जेल में 2 गुटों के बीच हुए संघर्ष में कम से कम 52 कैदियों की मौत हो गई है। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमरीका अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अफगानिस्तान से अपने सैनिक हटाने की योजना पर काम कर रहा है। अमरीका के कैलिफोर्निया स्थित गिलरॉय शहर में एक फूड फेस्टिवल में रविवार देर शाम हुई गोलीबारी में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा है कि हंगरी के कड़े शरणार्थी कानून यूरोपीय संघ के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। यमन के उत्तरी प्रांत सादा के एक बाजार में हुए हमले में 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत की खबर है। सूडान में आंदोलनकारियों ने देश में चल रहे सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को और तेज करने का आह्वान किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी अजीत सारथी के हाथ। दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।